मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी बेटा, बस आपके लिए खाना मंगवा दे, फिर मम्मा सारे वक्त आपके साथ ही रहेगी। अंशु को समझाकर आरवी रूम से बाहर आ गई और वाली बालकनी से नीचे झांकते हुए छाया को देखकर बोली, छाया अंशु के लिए जल्दी से खिचड़ी बना दो, कुछ खाएगी तो दवाई ले पाएगी। छाया जो आरवी का चंडी रूप देखकर सदमे में चली गई थी, वो उसकी आवाज़ सुनकर होश में लौटी और झट से सहमति में सर हिलाते हुए बोली, जी भाभी अभी बनाती हूँ। इतना कहकर वो किचन की तरफ बढ़ गई। शान ने गहरी सांस छोड़ी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सुभाष जी परेशान से उसको देखते रहे। कुछ देर बाद सुयश जी आए और उन्होंने सारी बात सुभाष जी को बताई और साथ ही अंशु की दवाइयां छाया को आरवी को देने को कहकर खुद फ्रेश होने चले गए। दूसरी तरफ आरवी वापस अंशु के पास आ गई। उसने हल्के गर्म पानी से उसके शरीर को पोंछकर उसके कपड़े बदल दिए, बालों को भी समेटकर बांध दिया तो अंशु उसकी गोद में बैठकर उसके सीने से लिपट गई। आरवी भी उसे अपने सीने से लगाए थपकी देते हुए शान से हुई बहस के बारे में सोचने लगी। गेट पर खड़ा शान उन्हीं दोनों को खामोशी से देख रहा था। कुछ देर वो यूं ही खड़ा उन्हें देखता रहा, फिर अंदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए हल्की तेज आवाज में बोला, कैसा है हमारा बच्चा? शान की आवाज सुनकर आरवी ने उसे देखा, फिर अपनी निगाहें फेर ली। अंशु ने भी आरवी के सीने से सर निकालकर उसको देखा और उदास चेहरा बनाकर बोली, फीवर हो गया बेबी को। शान अब उसके पास आ गया था। उसने उसको अपनी बाहों में उठा के और बड़े ही प्यार से बोला, फीवर हो गया हमारे बेटे को? अंशु ने तुरंत मुंह बिचकाकर सर हां में हिला दिया तो शान ने आगे कहा, पर हमारा बच्चा तो बहुत ब्रेव है, उसने फीवर से ढिशुम ढिशुम करके उसको भगाया क्यों नहीं? डैडी को क्यों नहीं बताया? डैडी होते तो फीवर की पिटाई करके उसको आपसे दूर भगा देते।
डैडी नहीं थे, बेबी डैडी को इतना मिस कर रही थी, पर डैडी नहीं आए।
अंशु बोलते बोलते रोआंसी हो गई। शान को भी दुख हुआ और उसने अंशु को अपने सीने से लगा लिया। सॉरी बच्चे, डैडी काम में फंस गए थे इसलिए ना तो आपसे बात कर सके और ना ही आपके पास आ सके, पर अब डैडी आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे।
सच्ची?
अंशु के उदास बेजान चेहरे पर चमक सी आ गई। शान ने उसके गाल को प्यार से चूमते हुए मुस्कुराकर कहा,
मच्छी।
अंशु खुशी से उसके सीने से चिपक गई। आरवी ने एक नज़र दोनों को देखा और फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। शान ने एक नज़र उसको देखा, फिर अंशु के साथ बिजी हो गया। कुछ देर बाद आरवी नहाकर बाहर आई और मांग में हल्का सा सिंदूर लगाकर जैसे ही जाने को मुड़ी, छाया हाथ में ट्रे लिए रूम में दाखिल हो गई। तो आरवी ने उससे ट्रे ले ली और अंशु के पास चली आई, जो शान से सीने से लगी उसकी गोद में बैठी हुई थी। अंशु बेटा, चलो जल्दी से खाना खाओ, फिर आपको दवाई भी लेनी है।
बेबी का मन नहीं है मम्मा,
अंशु ने क्यूट सी शक्ल बनाकर कहा, पर आरवी नहीं मानी। उसने उसको स्पून उसकी तरफ बढ़ाकर बड़े ही प्यार से कहा, पर खाना तो होगा बेटा, तभी तो आप मेडिसिन खाएंगी और तभी आप ठीक होंगी, इसलिए गुड गर्ल की तरह मम्मा की बात मानिए और अपना मुंह खोलिए। अंशु ने मुंह खोला तो आरवी ने उसको खिचड़ी खिला दी। बुखार की वजह से अंशु के मुंह का स्वाद बिगड़ चुका था। उसने बमुश्किल 3-4 स्पून खाए और फिर इनकार में सर हिलाकर बोली, नहीं मम्मा, बेबी को छींची आ रही है। उसका छींची का मतलब उल्टी थी। आरवी समझ रही थी कि तबीयत खराब में बड़ों के गले से खाना नहीं जाता, फिर वो तो बच्ची थी इसलिए उसको फोर्स नहीं किया। उसने मेडिसिन ली और मेडिसिन खिलाने पिलाने के बाद उसको दूध पिलाया, वो भी अंशु ने बस एक ही घूंट पिया। उसके बाद आरवी ने अपने आंचल से उसके मुंह को साफ कर दिया और ट्रे लेकर रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद वापस लौटी और शान को देखकर बोली, फ्रेश होकर नाश्ते के लिए नीचे चले जाइए, सब इंतजार कर रहे हैं आपका, मैं अंशु का ध्यान रख लूंगी। उसकी आवाज़ में अब भी नाराजगी झलक रही थी। शान ने सर हिलाया और अंशु को लिटाकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद बाहर आया तो आरवी अंशु के सर पर थपकी दे रही थी, जो दवाई और कमजोरी की वजह से सो चुकी थी। आरवी ने उसे देखा तक नहीं, बस एकटक अंशु को देखती रही। शान ने गहरी सांस छोड़ी और उसके साइड में आकर खड़ा हो गया। आरवी जानती थी कि वो वहां है, फिर भी उसने उसको ना तो देखा और ना ही कुछ कहा। कुछ सेकंड बाद शान ने ही खामोशी तोड़ी और आराम से बोला, नीचे जो हुआ उसके लिए सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी और रात को मेरे ना होने की वजह से तुम्हें जो परेशानी हुई उसके लिए भी माफी चाहता हूँ, पर मैं काम में फंस गया था। आरवी ने खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर निगाहें उसकी तरफ घुमाते हुए बिना किसी भाव के बोली, मुझे आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही सफाई देने की जरूरत है। हाँ, मैं अंशु को लेकर बहुत परेशान थी और गुस्से में आपको बहुत कुछ गलत कह गई, उसके लिए आई एम सॉरी। अब आप जाकर ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं हूँ अंशु के पास। तुम नहीं चलोगी नाश्ता करने? अंशु सो रही है तो तुम भी चलकर नाश्ता कर लो।
नहीं, मुझे भूख नहीं है अभी और अंशु को मैं एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए आप जाइए, मैं बाद में खा लूंगी।
शान समझ रहा था कि आरवी अंशु को लेकर परेशान है इसलिए खाने से इनकार कर रही थी, पर वो उससे जिद भी नहीं कर सका क्योंकि ऐसा रिश्ता तो था ही नहीं उनका। वो हार कर अकेले ही नीचे चला गया। कुछ देर में नाश्ता करके आया और अपना लैपटॉप लेकर अंशु की दूसरी तरफ बैठ गया। आरवी ने अंशु को अच्छे से कवर किया और एक नज़र शान को देखने के बाद वहां से चली गई।
सारा दिन यूं ही निकल गया। शान और आरवी सारा दिन अंशु के साथ ही रहे, पर उसको हल्का बुखार था तो वो उनके पास लेटी रही। आरवी ने सारे दिन में 8-10 बार उसको हल्का फुल्का खाना खिलाया, पर हर बार अंशु थोड़ा सा खाकर मना कर देती। रात को आरवी अंशु को अपने सीने से लगाए सोई। आधी रात को फिर उसको बुखार चढ़ गया था, पर दवाई देने पर ठीक हो गया। यूं ही 3 दिन बीत गए। अंशु को वायरल फीवर था, जो जब तब दवाई का असर रहता ठीक रहता, फिर वापस चढ़ने लगता। बुखार की वजह से वो काफी कमजोर हो गई थी, क्योंकि एक तो बुखार, उस पर ठीक से खाती पीती भी नहीं थी। आरवी 24 घंटे उसका ख्याल रखने में लगी रहती। शान ऑफिस जाता पर वक्त पर वापस आ जाता। अंशु ने खेलना कूदना बिल्कुल छोड़ दिया था। अब सब उसके रूम में जाकर उससे मिलते, उससे बातें करते, पर हमेशा चहकती रहने वाली उनकी डॉल अब शांत सी रहती थी। कुछ चिड़चिड़ी भी हो गई थी और आरवी को तो एक मिनट के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने देती थी। आरवी रूम में ही उसका मन बहलाने के लिए उसको खिलाती, ताकि थोड़ा एक्टिव रहे, पर वो बहुत जल्दी थक जाती थी। आरवी उसके खाने पीने और दवाई का ध्यान रख रही थी और डॉक्टर भी रोज उसको देखने आते थे। कल से अंशु का बुखार थोड़ा सही था, पर कमजोरी थी जो जाते जाते ही जाती। 5 दिन से ज्यादा हो गया था उसको ठीक से खाए, इसलिए आज सुबह जब वो सो रही थी तो आरवी किचन में आ गई, ताकि उसके लिए पौष्टिक मीठा दलिया बना सके, जो अंशु को बहुत पसंद था। शान आरवी के रूम से जाने से पहले ही जिम में जा चुका था और निश्चिंत होकर अपनी एक्सरसाइज कर रहा था कि आरवी है अंशु के साथ। सुयश जी और सुभाष जी बाहर गार्डन में बैठे थे और अर्पिता जी पूजा की तैयारी में व्यस्त थीं। छाया साफ सफाई में लगी हुई थी। सौरभ ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था और आरवी जल्दी जल्दी अंशु के लिए दलिया बना रही थी। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। नन्ही अंशु नींद में भी आरवी को ढूंढ रही थी। आदतन उसने अपने हाथ से आरवी को छूने की कोशिश की, पर जब उसको आरवी के पास होने का एहसास नहीं हुआ तो उसकी नींद उचट गई। वो उठकर बैठ गई और पूरे रूम में देखा, पर आरवी कहीं नहीं दिखी।
इन दिनों अगर आरवी एक पल के लिए भी उसकी आंखों से ओझल होती तो अंशु रुआसी हो जाती थी, और अब जब उठने पर उसको आरवी कहीं नहीं दिखी तो उसकी छोटी छोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। उसने 2-3 बार आरवी को पुकारा भी, पर शरीर के साथ साथ आवाज भी कमजोर हो चुकी थी, तो भला नीचे किचन में मौजूद आरवी उसकी आवाज कैसे सुन पाती। जब कुछ देर बाद भी आरवी नहीं आई तो अंशु चादर पकड़कर बेड से नीचे उतर गई। कितने दिनों बाद वो अपने पैरों पर चल रही थी, जो लड़खड़ा रहे थे। मम्मा मम्मा पुकारते हुए और अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से अपनी आंखों को मसलते हुए अंशु आरवी को ढूंढते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वो रोते हुए आरवी को पुकार रही थी, जिस वजह से आवाज गले से बाहर ही नहीं आ रही थी। अंशु सीढ़ियों के पास पहुंची और धीरे धीरे से आरवी को पुकारते हुए नीचे जाने लगी। वहीं साइड में बनी जिम में मौजूद शान के कानों में अंशु की धीमी सी आवाज पड़ी तो पहले तो उसको वहम लगा, पर जब आवाज कुछ तेज हुई तो उसका सारा भ्रम टूट गया। उसने डंबल्स छोड़े और तुरंत ही बाहर भागा। अंशु 3-4 दिनों बाद चल रही थी, शरीर में कमजोरी भी बहुत थी, तो सो 4 सीढ़ियां उतरने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़ी, एकदम से उसकी आंखें बंद हो गईं और अगले ही पल धड़ धड़ करके वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। ऊपर खड़ा शान, जो अभी अभी जिम से बाहर आया था और अंशु को सीढ़ियों से उतरते देखकर घबराकर उसकी तरफ बढ़ ही रहा था, उसके कदमों ने उसका साथ छोड़ दिया। आंखें भय से फैल गईं और वो जड़ सा वहां खड़ा अंशु को गिरते देखता रहा। किचन से बाहर निकली आरवी, जिसके हाथ में ट्रे थी और उसमें अंशु के लिए दलिया था। वो कुछ आगे ही बढ़ी थी कि आवाज से उसका ध्यान सीढ़ियों की तरफ गया, जहां से अंशु फुटबॉल की तरह लुढ़कते हुए ऊपर से नीचे आ रही थी। आरवी शॉक्ड सी वहां खड़ी रह गई और उसकी आंखों की पुतलियां डर से फैल गईं। हाथ पैर ठंडे पड़ गए ये नजारा देखकर और चेहरा बुरी तरह पसीने से भीग उठा। नन्ही सी अंशु ऊपर से गिरते हुए सीधा मुंह के बल फर्श पर जा गिरी और सर से खून की धार फूट पड़ी। आरवी के हाथ से ट्रे छूट गई और वो बुरी तरह चीख उठी। अंशु, शान के कानों में उसकी चीख पड़ी तो वो होश में आया और धड़धड़ाते हुए सीढ़ियां उतरने लगा। वहीं आरवी भी बदहवास सी उसकी तरफ दौड़ गई और उसके पास जमीन पर बैठकर उसका सर अपनी गोद में रख लिया। उसके सर से खून बहते देखकर आरवी की आंखें बरस पड़ी। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा उसके सर पर बांध दिया और खून से सने उसके गालों को थपथपाते हुए बिखरे स्वर में बोली, अंशु अंशु बेटा, आंखें खोलो, क्या हुआ आपको? बेटा, मम्मा आपके पास है, आंखें खोलो अपनी।